जय गोपी जन बलभ गिरिवर धारी जय जय गोपी जन बलभ hare krishna hare krishna 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 hare 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 ram hare ram 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 hare 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 krishna hare krishna 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 hare 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 ram hare ram 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 hare 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 krishna 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 hare 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 ram 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 hare 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 krishna hare krishna 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 hare 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 ram ram hare krishna 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 hare 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 ram 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 hare hare
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयाद्मुदीरये नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमाश्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम पढ़ेंगे कंठो नायन अध्याय 21 श्लोक 6। तस्मे सिद्ध्य भजत स अन्नम् तस्मे सिद्ध्य भजते स अन्नम् आदृत्य श्रद्धया उन्नीता आदृत्य श्रद्धया उन्नीता हरिं सर्वत्र संपश्यन् सभुक्त्वा प्रयो द्युज तस्मे यं भजते सोऽन्नम् आदृत्य श्रद्धया अन्वितम् हरिं सर्वत्र संपश्यन् स भुक्त्वा प्रययो द्विज तस्मे सद्यं भजते सन्न आदृत्य श्रद्धया अन्युतम् हरिं सर्वत्र संपश्यन् स भुक्त्वा प्रययो द्विज श्लोक पढ़ने के पहले अगर कुछ श्लोक पहले से हैं पढ़ लेंगे आप कल सुन लीजिए। श्री सुखोवाच सुखदेव गोस्वामी ने कहा क्योंकि मरुदगण ने भरद्वाज को लाभ कर दिया था, इसलिए वो बिथक कहलाया। बिथक के पुत्र का नाम मन्यु था, मन्यु था, जिसके पांच पुत्र हुए व्रत, क्षत्र, जय, महावीर, नर तथा स्वर्ग गर्ग। इन पांचों में से नर के पुत्र का नाम संकृति था। नेक्स्ट, हे महाराज परीक्षित, हे पांडु वंशज, संकृति के दो पुत्र थे गुरु तथा रंतिदेव। रंतिदेव इस लोक में तथा परलोक दोनों में ही विख्यात है, क्योंकि उनकी महिमा का गान न केवल मानव समाज में अपितु देव समाज में भी होता है। नेक्स्ट, रंतिदेव ने कुछ भी कमाने का कभी यत्न नहीं किया। उसे भाग्य से जो मिल जाता उसे ही भुगता, किंतु जब अतिथि आ जाते तो वो हर वस्तु उन्हें दे देता था। इस तरह उसे तथा उसके साथ उसके परिवार के सदस्यों को काफी कष्ट सहना पड़ा। वो तथा उसके परिवार के लोग अन्न तथा जल के अभाव से थर थराते रहते थे, फिर भी रंतिदेव धीर बना रहता। एक बार 48 दिनों तक उपवास करने के बाद रंतिदेव को प्रातःकाल थोड़ा जल तथा घी और दूध से बने व्यंजन प्राप्त हुए, किंतु जब वो तथा उसके परिवार वाले भोजन करने जा रहे थे तो एक ब्राह्मण अतिथि आ धमका। आज के श्लोकों का शब्द कहते हैं, बोल दीजिए। तस्में उस ब्राह्मण को व्यभजत, अपना हिस्सा दे दिया। स उसने अन्नम भोजन आदृत्य आदर पूर्वक श्रद्धयान्वित अत्यंत श्रद्धा पूर्वक हरिं भगवान को सर्वत्र सभी जगह हर जी के हृदय में संपश्यन देखते हुए स व भुक्त्वा भोजन करके प्रययो उस स्थान से चला गया। जीवज ब्राह्मण, तात्पर्य ट्रांसलेशन एंड प्रॉपर्टी डिवाइन ग्रेस प्रभुपाद जी के द्वारा, श्रील प्रभुपाद की ट्रांसलेशन। क्योंकि रंतिदेव को सर्वत्र गंगा जी में भगवान की उपस्थिति का बोध होता था, अतएव वो बड़े ही श्रद्धा सम्मान से अतिथि का स्वागत करता और उसे भोजन का अंश देता था। उस ब्राह्मण अतिथि ने अपना भाग खाया और फिर चला गया। तात्पर्य, रंतिदेव को हर जीव में भगवान के दर्शन होते थे, किंतु वो कभी ये नहीं सोचता था कि क्योंकि भगवान हर जीव में है, अतएव हर जीव भगवान भगवान है। इस तरह वो जीव जीव में भेद नहीं मानता था। उसे ब्राह्मण तथा चांडाल दोनों में भगवान की उपस्थिति प्रतीत होती थी। वो असली समदृष्टि है, जैसा कि स्वयं भगवान ने भगवद गीता में पुष्टि की है। विद्याविनय संपन्न ब्राह्मण गभीरस्तिन सनिचर सोपापेच पंडित समदर्शिन। असली ज्ञान होने से विनीत साधु विद्वान तथा नम्र ब्राह्मण गाय हाथी कुत्ता तथा चंडाल को समान दृष्टि से देखता है। पंडित अर्थात विद्वान व्यक्ति हर जीव में भगवान की उपस्थिति को देखता है। यद्यपि आजकल दरिद्र नारायण की वरीयता देने की प्रथा बन चुकी है, किंतु रंतिदेव के समक्ष ऐसा न था। यह विचार कि नारायण दरिद्र अर्थात गरीब के हृदय में उपस्थित है, अतएव इस गरीब को दरिद्र नारायण कहा जाए भ्रांत धारणा है। ऐसे तर्क से तो कुकर सुकर भी नारायण बन जाएंगे, क्योंकि भगवान उन सबों के हृदय में रहते हैं। हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि रंतिदेव की विचारधारा ऐसी थी। वो तो हर एक को भगवान का अंश मानते थे, हरि संबंधी वस्तु न। ऐसा नहीं है कि हरि हर कोई भगवान है, ऐसा सिद्धांत मायावादियों का है जो भ्रामक है, और रंतिदेव ने इसे कभी भी स्वीकार नहीं किया होता। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोविष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदामयं ददाति स्वपदान्तिकम् वन्दे अहं श्रीगुरां श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांस श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथनितं तं सजीवं सदैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सगणललिता श्रीविशाखानितं स हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त श्रीराधाकान्त नमस्तु ते तत्कांचन गौराङ्गी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वंशाकल्पयोभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण। तो यहाँ पर जो भागवत के जो प्रसंग भरत महाराज के कीर्ति, वो इतने बड़े भक्त हुए और उनके भक्ति के प्रभाव से उनके वंश में और एक महान भक्त, हाँ, जिनके कथा आज शुरू हो रही है, रंतिदेव महाराज, जिनके मार्ग दिखाते हुए ब्रह्मचारी हो, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यासी के लिए एक बहुत बड़ा आध्यात्मिक मार्ग में उदाहरण बने, जो कि हमें भक्ति मार्ग में खुराक मिले, हाँ, भक्ति में उत्सुकता बनाए रखने के लिए तो हमें पथ प्रदर्शन किए और ऐसे भगवान के भक्त बने रंतिदेव महाराज, जिनका कीर्ति श्री राधा गिरिधरी भगवान की, जय जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी की, श्रील प्रभुपाद की। तो रंतिदेव महाराज ऐसे अपने जीवन को भक्ति में ढालें जिनका कीर्ति धरती पे नहीं, भौतिक जगत में नहीं, ऐसे कि स्वर्गलोक, ऐसे कहा जाता है यह लोक और अमूत्र, यह अमूत्र, यह मतलब ये जहाँ पर हमें हैं, और अमूत्र मतलब कभी कभी स्वर्ग कहा जाता है और कभी कभी भौतिक जगत की स्वर्ग ब्रह्मलोक की बात भी कहा जाता है, परलोक। यहाँ पर प्रभुपाद जी बताते हैं कि परलोक। तो इतने बड़े भक्त बने थे जिनके गाथा, जिनका जस कीर्ति परलोक में भी गाया जा कीर्ति गाया जा रहा था। और उनके जीवन में ऐसे एक मोड़ आया था, दिन आया था जिन्होंने एक दिन 48 दिन का एक तप उठाए थे, व्रत लिए थे, उपवास की, और 48 दिन के उपवास के बाद उन्होंने अपने परिवार के साथ कुछ भोजन लेने के लिए बैठे हुए थे, तैयार हो रहे थे, ठीक उसी समय अपने हृदय को, अपने मन जीवन को ऐसे बना लिए थे भक्ति के द्वारा, और हर वस्तु में, हर जीवों में उनको भगवत स्मृति हो रही थी। वो इतने बड़े भाग्यवान थे, वो हर जगह में अपने इष्ट को दर्शन कर पा रहे थे, इतनी क्षमता, उनके आध्यात्मिक शक्ति उन्होंने कमा, उनके जीवन में आ गया था। ये बहुत बड़ी बात है। ये जो हो गया तो वो महाभागवत में कुटी में आ जाते हैं। तो ऐसे एक व्यक्ति थे और जा रहे थे कुछ भोजन लेने के लिए परिवार के साथ, ठीक उसी समय के अतिथि वहाँ पर पधारे, ब्राह्मण थे, और अपने हिस्सा को रंतिदेव ने ब्राह्मण को दे दिए। फिर जो जो बचा फिर उसको फिर बंटवारा करके वो जा रहे थे फिर लेने के लिए, बाकी भोजन जो बचा था उसको फिर बांट करके जा रहे थे लेने के लिए। फिर एक शूद्र आया तो शूद्र को अपना हिस्सा दे दिए, ऐसे रह गए। फिर जो भी बचा था और जो बचा था तो उसमें फिर बांट करके वो फिर वो हिस्सा को लेने के लिए जा रहे थे। एक फिर तीसरा एक अतिथि आ गए तो अपने कुत्तों के साथ, अपने असिस्टेंट के साथ। हाँ, आजकल के तो मनुष्य भगवान को जितना सहायक नहीं मानता उतना कुत्ता बिल्ली को मानता है, तो ये स्वभाव है ये युगों का। तो इसी प्रकार के व्यक्ति आया कुत्ता के साथ, तो रंतिदेव ने चाहे कुत्ते हो या कुछ भी हो, तो उन्होंने तो भगवान को देख ही रहे हैं और कुत्ता को क्या देखेंगे, तो अपने भाव को वो कुत्ते के साथ उनका मालिक को दे दिए और ऐसे ही खड़े खड़े रह गए, उपवास रह गए और कुछ नहीं था हाथ में लेने के लिए। और फिर इतने धीरज रखे थे, 48 दिन उपवास के बाद अतिथि के स्वागत उनके भीतर इतने प्रबल था और इसने बाद भी अपने को शांत रखे थे। ये सही बात है, भगवत भक्ति ऐसे एक अवस्था है, वो अवस्था में पहुंचने के बाद व्यक्ति के भीतर ऐसे आ ही जाता है, ऐसा कोई बाय फोर्स उनको करना नहीं होता। वो जो धैर्य सहनशीलता बाकी सारे सद्गुण उनके भीतर आ जाता है। तो ये रंतिदेव ऐसे हुए थे, तो बाकी बचा था पानी, और ऐसे पानी जो बचा हुआ पानी को लेने के लिए जा रहे थे तो अचानक एक चंडाल वहां पर आकर पहुंचा। तो रंतिदेव जी को बोला, देखो मैं बहुत प्यासा हूँ और कृपा करके आपके हाथ में जो पानी है तो आप मुझे दे दोगे तो बहुत बड़ी बात हो जाएगा। तो रंतिदेव जी तो देखें कि अतिथि का सेवा इतना बड़ी बात है, तो योग जप तप दान ध्यान के द्वारा प्राप्त नहीं हो पाती है, तो ऐसे मान लिया। तो रखे हुए पानी को वो चंडाल को दे दिए और इसी प्रकार सब कुछ देने के बाद मरने मरने हो जा रहे थे। ठीक उसी समय जो भी जो उनके परखने वाले परीक्षा लेने वाले जो वहां पर आए थे सारे देवता लोग थे, ब्रह्मा शिव सारे देवता लोग थे, वो अपने प्रकट में आ गए, स्वरूप में आ गए और उनको दर्शन दिया और बहुत बड़े आशीर्वाद देकर अपने अपने धाम में प्रत्यावर्तन किए। तो खास करके आज के प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बताए, जो संत होते हैं वो हर जीवों में हर वस्तु में वो भगवान को दर्शन करते हैं। और इस जगत की सृष्टि के समय से ही दो प्रकार के प्राणी रहे, एक है असुर और एक देवता। जो देवता होते हैं वो सदैव भगवान के स्वामी भक्त होते हैं, और जो नास्तिक होते हैं वो भगवान के श्रेष्ठता को ललकारते हैं। और आप इस समय देख सकते हैं सारे संसार में नास्तिकों का बोलबाल है, और ये सिद्ध करने का प्रयास कर रहे हैं कि भगवान भगवान कुछ नहीं है। तो हर घटना जो है भौतिक तत्वों के संयोग से बनती है। इसी प्रकार सारे संसार में अधिकाधिक ईश्वर भी, ये सारा संसार अधिकाधिक ईश्वर भी बनते जाए, फलस्वरूप सब कुछ अस्त व्यस्त है। इस तरह यदि ऐसी स्थिति यदि बने रहे तो भगवान निश्चित रूप से कार्यवाही करेंगे, जिस प्रकार हिरण्यकश्यप के साथ किए थे। भगवान ने क्षण मात्र में हिरण्यकश्यप और उनके जो सहयोगी थे उनके अनुयायी को क्षण मात्र में विनष्ट कर डाले। इसी प्रकार ये ईश्वर विहीन सभ्यता यदि ऐसी इसी प्रकार आगे चलते रहे तो भगवान के एक उंगली हिलाने मात्र से ये क्षण भर में नष्ट हो जाएगा। यहाँ पर असुरों को एक प्रकार का सावधान किया जा रहा है। कृष्ण भावनामृत अपनी ईश्वर विहीन सभ्यता के प्रति कटौती करनी चाहिए असुरों को, और कृष्ण भावनामृत आंदोलन का लाभ उठाना चाहिए और इस भगवान के आदेश के प्रति आज्ञाकारी बन जाना चाहिए, अन्यथा विनाश निश्चित है। जिस प्रकार हिरण्यकश्यप का विनाश हुआ इसी प्रकार ये ईश्वर विहीन सभ्यता किसी भी क्षण नष्ट हो सकता है। हिरण्यकश्यप जब ब्रह्मा जी के द्वारा वर प्राप्त हुआ और ब्रह्मा जी उनको वर प्रदान किए थे कि देखो तुम स्वर्ग में नहीं मरोगे या आकाश में नहीं मरोगे, तो भगवान ने ब्रह्मा जी के वचन को अक्षत रखने के लिए तो हिरण्यकशिपु के शरीर को अपने गोद में ले लिए। हाँ, ना स्वर्ग था ना आकाश। फिर दूसरी बार था ब्रह्मा जी का कि तुम दिन में नहीं मरोगे या रात में नहीं, तो भगवान उसको ऐसे समय चुने मारने के लिए, हाँ ना दिन था या रात, दिन का अवसान हो रहा था और रात्रि का शुभारंभ, दिन नहीं था या रात नहीं था। फिर तीसरा ऐसा था ना तुम कोई हथियार के द्वारा मरोगे ना कोई जीवित वस्तु या मृतों के द्वारा मरोगे, तो भगवान ने हाँ हिरण्यकशिपु के शरीर को शरीर के ऊपर अपने नाखून को घुसाड़े दिए। हाँ, ना वो हथियार था ना जीवित था या मृत। प्रभुपाद जी बताते हैं नाखून जो होता है ना जीवित होता है या मृत। तो भगवान ने हाँ ब्रह्मा जी का जो ये वचन है उनको सच्चाई करने के लिए, ऐसे सच बनाने के लिए और बड़े विषम स्थिति से और किंतु सरलता के साथ हाँ वो असुर को मार डाले। एक बार हिरण्यकशिपु ने पूछा कि प्रहलाद तुम भगवान कह रहे हो क्या, तेरे प्रभु ये तेरे प्रभु कहाँ है? तो प्रहलाद महाराज इसका जवाब देते हुए कहने लगे कि तो अत्र तत्र सर्वत्र है। अच्छा, ऐसा तो अत्र तत्र सर्वत्र ये ऐसा है क्या, खंभे में है ना? अवश्य, प्रहलाद महाराज बताए अवश्य, यदि वो सर्वत्र है तो क्यों खंभे में क्यों नहीं है? तो ये बात सुनकर हिरण्यकशिपु ने अपने गदा लिया और भगवान के ऊपर ना खंभे के ऊपर चला दिया। और जैसे चला दिया तो खंभे से भगवान प्रकट हुए। सत्यं विधातु निज भृत्य भाषितम, अपने भृत्य के वचन को सच बनाने के लिए सिद्ध करके दिखाने के लिए भगवान ने तो खंभे से निकल पड़े। और ऐसे तो भगवान ऐसे कोई भविष्यवाणी नहीं किए थे कि मैं ऐसे रूप में प्रकट होऊंगा, लेकिन ये कहे थे कि जब मेरे भक्त को सताएगा मारने के लिए जो दिन आएगा मैं उसी दिन प्रकट होकर मैं उसको मार डालूंगा। और भगवान नरसिंहदेव को ना भगवान हिरण्यकशिपु को मारने के बाद वो इतने क्रोधित हो गए थे, क्रोध के बस में इतने गरज रहे थे, उनके गरजना से तीनों लोग कांप रहा था। क्योंकि जो भक्त सर्वत्र भगवान को दर्शन करता है ऐसे भक्तों को रक्षा करने के लिए भगवान कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और वहां पर हिरण्यकशिपु का वध करने के बाद तो भगवान नरसिंहदेव इतने ऐसे गरज रहे थे, उनके गर्जना से तीनों लोग हिल रहा था। और ब्रह्मा जी वहां पर सारे देवता लोगों को ऐसे कि लक्ष्मी जी को भी कहें कि देखो आपका पति है, आप उनको संभाल सकते हो, जाओ आगे बढ़ो कुछ करो, नहीं तो तीनों लोगों का विनाश होने वाली है, तो आप कुछ करो। तो ये बात सुनकर लक्ष्मी जी ब्रह्मा जी को कहते हैं भले मैं उनके साथ रह रही हूँ लेकिन ये क्या है, मैं नहीं जाऊंगी, मुझे नहीं जाना है। हाँ, भले मैं रहती हूँ लेकिन ये क्या अद्भुत है, तो कभी तो उनमें सुना था ना देखा था, मैं नहीं जा सकती। तो लक्ष्मी के ऐसा कहने से तो ब्रह्मा जी ने प्रहलाद महाराज के पास आए और आकर कहने बच्चा देखो तुम्हारा पिताजी के वजह से प्रभु इतने क्रोध में है, तो आप कुछ करो। तो ब्रह्मा जी के बात सुनकर प्रहलाद महाराज हाथ में एक फूलमाला लिए और आगे बढ़े और जाकर के भगवान के गले में एक फूलमाला दे देते हैं और दंडवत कर देते हैं, तब भगवान शांत हो जाते हैं। जहां पर ब्रह्मा जी और लक्ष्मी जी भगवान को शांत नहीं कर पाए वहां पर प्रहलाद जो कि 5 साल के थे, बालक थे, इसीलिए भगवान वचन बताते भी है भक्त्या माम अभी जाना थी, मेरा भक्त ही मुझे जान सकता। और भगवान शांत होने के बाद प्रहलाद को अपने गोद में लेकर के ऐसे वो उनको उनके प्रति प्रेम दिखा रहे थे जिस प्रकार एक गाय अपने नवजात बछड़े को प्रेम से उनका शरीर को चाटती है, ठीक उसी प्रकार। इसीलिए भगवान का एक नाम है भक्त वत्सल, अपने भक्तों के प्रति वो बड़े ही वत्सल रहते हैं। हिरण्यकशिपु जब तरह तरह की योजना बना रहा था प्रहलाद महाराज को मारने के लिए, और प्रहलाद महाराज बड़े निर्भीक होकर के सारे चीजों को स्वीकार कर रहे थे, क्योंकि उनको जब प्रहलाद हिरण्यकशिपु सता रहा था तो प्रहलाद महाराज सारे जगह में भगवान को दर्शन कर रहा था और भगवान उनको दर्शन देते दे करके उनको ये अभय कर दे रहे थे कि प्रहलाद नहीं डरो, मैं तुम्हें रक्षा करूंगा। और ये बात भी भगवान भगवद गीता में भी बताते हैं, कांते प्रतिजानी नम भक्त्य प्रणश्यति। हाँ, ये अर्जुन ने दुनिया को बता दो कि मेरा भक्त का दुर्गति बिना उसमें देख ही नहीं सकता। और ये भी कहते हैं जमांग पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्यं न प्रणश्यामि सत्यमेन प्रणश्यति। हाँ, जो व्यक्ति सारे जीवों में मुझे दर्शन करता और सारे वस्तु में मुझे अनुभव करता है तो वो व्यक्ति से मैं दूर नहीं हूं ना वो व्यक्ति मेरे से दूर है। त्वाम अकिंचन गोचरम, कुंती महारण भी बताती, आपको वही जान सकता जिन्होंने ये संसार को छोड़ चुका है, जिन्होंने अपने भरोसा को और इधर किधर नहीं लगाया। कुंती महारानी बताती है जिन्होंने ये संसार से अपने आशा को खत्म कर चुका है, ऐसे ऐसे व्यक्ति ही आपको जान सकता है। कुंती महारानी बताती है। तो एक बार ऐसा वृंदावन में जब दास गोस्वामी जी कर रहे थे, रघुनाथ दास गोस्वामी, तो धूप में, और वृंदावन के धूप जो होती है बहुत सॉफ्ट होती है, सॉफ्ट नहीं होती है, बहुत कड़क होती है, और ठंडी भी बहुत कड़क होती है। तो दास गोस्वामी एक बार वृंदावन के धूप में बैठ करके भजन कर रहे थे, भजन कर रहे थे, और जो धूप है उनको बहुत सता रहा था। जब राधा रानी ऐसे अवस्था में रघुनाथ दास गोस्वामी को देखें तो तुरंत वहां पर आके पहुंचे। हाँ, आके पहुंच के अपने जो साड़ी का जो किनारा, क्या कहते हैं, हाँ, पल्लू जो भी है, तो उसको रघुनाथ दास गोस्वामी के सर के ऊपर छता के रूप में धर करके पकड़ करके रखे हैं। हाँ, खुद ही धूप सह रहे, लेकिन वो रघुनाथ दास गोस्वामी को वो धूप से वो बचा रहे थे। तो ये अवस्था को जब रूप गोस्वामी देखे, हाँ, तो रूप गोस्वामी कह पड़े, हाँ, ये सब क्या है, तो हम आए थे वृंदावन में राधा कृष्ण का सेवा करने के लिए, तो इसे उल्टा हो गया, यहाँ पर आके हमें राधा रानी का सेवा ले रहे हैं। तो दूसरा दिन जब रघुनाथ दास गोस्वामी जा रहे थे भजन में, भजन करने के लिए धूप में, तो रूप गोस्वामी बोले, देखो हाँ, तो कल से, आज से आप धूप में बैठ करके भजन मत करो, आप कुटिया के भीतर बैठ करके भजन करो। तो दास गोस्वामी समझ गए, तो रूप गोस्वामी जो कहते हैं उनके पीछे कुछ है। तो फिर तो कहने का अर्थ ये है, जो सच्चे संत होते हैं वो सर्वत्र भगवान का दर्शन करते हैं, और भगवद गीता में भी भगवान ये बात को बताते हैं, भगवान को दर्शन करने का योग्यता क्या है, विद्या होना चाहिए और विद्या के साथ विनय होनी चाहिए। विद्या मतलब स्वरूपगत विद्या, भक्ति की विद्या, भगवान के प्रति जो, भगवान को जानने की जो ज्ञान है, वो विद्या जब होती है, और ये विद्या आने मात्र से व्यक्ति विनय हो जाता है, सहज हो जाता है। स्वरूपगत विद्या हो जाने के बाद व्यक्ति झुक जाता है। हाँ, विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण गरीयस्थिनी सुनिश्चय सोपाकेचः, सोपाय तात्पर्य बताते हैं, पंडित समदर्शिन, हर जगह में भगवान को दर्शन करता है। हाँ, मतलब वो झुक जाता है, विनय मतलब झुक जाता है, झुकना मतलब वो सरेंडर हो जाता है। और जैसे जीव सरेंडर हो जाता है, झुक जाता है, शरणागत हो जाता है, तो फिर वो ईश्वर प्राप्ति हो जाती है, भगवत दर्शन उनको सर्वत्र होती है। क्या है, सुनिश्चय सोपाकेचः पंडित समदर्शिन, पंडित मतलब कोई बहुत बड़ा ज्ञानी नहीं है, पंडित मतलब भक्त है। हाँ, ऐसे जब स्वरूपगत ज्ञान होने के बाद विनय बन जाता, तो फिर वो ऑटोमेटिक वो भगवान के शरण में रहना पसंद करता है, तो फिर भगवान उनको सारे जगह में दर्शन देते हैं। महात्मा सुदुर्लभ, ऐसे संसार में वासुदेव सर्वमिति, ऐसे महात्मा इस संसार में बहुत ही कम दिखते हैं। भगवान भगवद गीता में भी ये बात को बताते हैं। और जब तक भगवान की कृपा नहीं होती है तब तक हमें भगवान का दर्शन नहीं प्राप्त होता है। जब चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में संन्यास लीला के समय रह रहे थे, तो उड़ीसा के जो राजा प्रताप रुद्रदेव चैतन्य महाप्रभु के दर्शन लेने के लिए वो तड़प रहे थे, लेकिन भगवान चैतन्य महाप्रभु उनको दर्शन देने के फर्म में नहीं थे। तो ऐसे राजा ने विचार कर लिया, यदि चैतन्य महाप्रभु मुझे दर्शन नहीं देंगे तो मैं कानफटा योगी बन जाऊंगा। कानफटा योगी क्या होता है, जो होता है, तो ऐसे कविराज दास गोस्वामी लिखे और मैं आत्महत्या कर दूंगा, इसी प्रकार वो कहने लगे। और ये बात सारे भक्तों ने चैतन्य महाप्रभु को जाके बताने लगे कि देखो, आप यदि राजा को दर्शन नहीं दोगे तो राजा ने आत्महत्या करने के लिए निष्पत्ति ले लिए। तो कृपा करके आप वो राजा को दर्शन दीजिए। तो जवाब में चैतन्य महाप्रभु बोले कि हाँ, एक संन्यास जो राजा होता है वो स्त्री और धन के बीच में रहता है, तो सन्यासी को ऐसे व्यक्ति को मिलने के लिए शास्त्र में मना किया गया। मैं एक सन्यासी हूँ हाँ, तो ऐसे व्यक्ति को मैं कैसे दर्शन दूँ मिलूँ हाँ। तो वहाँ पर भक्त लोग बताते हैं है ना, चैतन्य महाप्रभु बताते हैं कि राज दर्शन स्त्री दर्शन, स्त्री दर्शन विसर भक्षण। राजा का दर्शन चैतन्य महाप्रभु ऐसे बताते हैं, राजा का दर्शन जो होता है स्त्री का दर्शन की बराबर है, और एक सन्यासी जब स्त्री का दर्शन करता है वो विष खाने की बराबर हो जाता है। चैतन्य महाप्रभु ऐसे कहते हैं स्त्री दर्शन विसर भक्षण, इसलिए मैं राजा को दर्शन नहीं दे सकता। और ब्रह्मा जी भी बात को बताते हैं, भगवान को देखने के लिए योग्यता क्या है, क्या है श्लोक, प्रेमांजन चुरित भक्ति विलोचन संत सदैव हृदय से विलोकयंती श्याम सुंदर हाँ। श्याम सुंदर को अपने आंखों में ऐसे प्रेम की एक चीज लगा लिया, वो प्रेम के आंख के द्वारा ही भगवान का दर्शन होती है। ज्ञान तपस्या कपिल देव जी बताते हैं, योग दान तपस्या जप, हमारे जप तपस्या की हमारा साधना, ये सबके द्वारा भगवत दर्शन नहीं हो पाती है। कैसे, न प्रेम के द्वारा हाँ, प्रेम जिनके हृदय में प्रेम है वही ही भगवत साक्षात्कार कर सकता है, भगवत दर्शन ले सकता है, ऐसे ब्रह्मा जी बताते हैं। इस वक्त हमारे आंख में क्या हो गया, मोतियाबिंद हो गया है, अभी हमें बीमार है, लेकिन तो मोतियाबिंद को जब ट्रीटमेंट किया जाए, ऑपरेशन किया जाए, तो हमें कुछ देख सकते हैं है ना। जब मोतियाबिंद हो जाता है ना, तो व्यक्ति को साफ साफ दिखता नहीं है हाँ, लेकिन मोतियाबिंद को जब आंखों से निकाल दिया जाता है तो फिर साफ सब कुछ साफ साफ दिखता है। ठीक उसी प्रकार हमारे आंखों में ऐसे कुछ है कि बीमारी हो गया, ऐसे रुग्ण आंखों के द्वारा भगवत दर्शन नहीं हो पाती है हाँ, इसीलिए ट्रीटमेंट चाहिए, उपचार चाहिए। जब भगवान श्री कृष्ण कंस के रंगमंच में प्रवेश किए तो वहां पर अनेक लोग बैठे थे, अनेक प्रकार प्रकार के चेतना के लोग, और जिस जो व्यक्ति का जिस प्रकार का चेतना है तो वो व्यक्ति को उसी प्रकार भगवान दर्शन दिए हाँ। तो वहां पर हमारे चेतना को सुधार जाए, केवल हमारे चेतना को यदि हमें सुधारें तो फिर हमें भगवत साक्षात्कार कृष्ण कृष्ण कॉन्शियसनेस यदि चेतना बनाया जाए, हमारे चेतना को यदि कृष्ण कॉन्शियसनेस बनाया जाए तो फिर हमें हर जगह में कृष्ण को दर्शन कर सकते हैं। तो ये बात भी असुरों लोगों को पता नहीं होती है कि भगवान इतने सर्वशक्ति संपन्न है हाँ, उन्हें ज्ञान होने के कारण हमेशा एक आवाज करते हैं हाँ, भगवान भगवान कुछ नहीं है माँ, क्या ये मूढ़ यंग अभी ज्ञान आती, जो मूढ़ होते हैं वो भगवान का दर्शन नहीं कर पाते हैं ऐसे, और हमेशा भगवान को अपने साथ तुलना करते हैं, और एक सामान्य मनुष्य के जैसे सोचते हैं। और हिरण्यकश्यप ऐसे सोच रखा था कि मुझे तो ब्रह्मा जी के द्वारा वर प्राप्त हुआ है, मैं कोई मनुष्य के द्वारा नहीं मरूंगा कि कोई पशु के द्वारा नहीं मरूंगा, लेकिन उसको ये बात पता ही था कि ये भगवान मनुष्य और पशु दोनों संयुक्त होकर के उनको आश्चर्यचकित कर देंगे। ये है भगवान के सर्वशक्तिमता का परिचय है। जब तक हमें प्रकृति के तीनों गुणों में रह आते हैं तब तक हमें अंधकार में होते हैं, और भगवान का दिव्य उपस्थिति से ये अंधकार जाते रहता है। और आप जानते हैं ये भौतिक जगत तमोगुणों के द्वारा नियंत्रित है, और जो व्यक्ति तमोगुण में होता है वो भगवान को नहीं समझ सकता। ये जो भौतिक संसार है ये पूरा तमोगुण में हाँ, और यहाँ पर जो भी लोग रहते हैं वो तमोगुणी है हाँ, तो तमोगुणों के द्वारा भगवान का दर्शन नहीं कर पाते हैं हाँ, ये बात को बताया जाता है। तो कभी कभी ये भी असुर लोग आवाज करते हैं कि भगवान भगवान कुछ नहीं है हाँ। तो एक बार और एक बात यहाँ पर मैं प्रभुपाद जी का लीलामृत में मैं सुना कि एक बार प्रभुपाद जी कृष्ण बलराम मंदिर के ऐसे सीढ़ी के ऊपर बैठे थे, तो अचानक प्रभुपाद जी ने हंस पड़े, तो उनके बगल में जो कुछ शिष्य लोग थे तो पूछे कि प्रभुपाद आप हंस क्यों रहे हो, तो प्रभुपाद जी बोले देखो 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 कृष्ण बलराम किस प्रकार खेल रहे हैं। प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि देखो कृष्ण बलराम कैसे खेल रहे हैं हाँ, लेकिन उनके शिष्य लोगों को दिख नहीं रहा था हाँ, लेकिन प्रभुपाद जी को दिख रहा था। जो सच्चे भक्त होते हैं तो वो हर समय भगवान का दर्शन कर पाते हैं। मैं बता रहा था कि ऐसे ही संसार में कुछ लोग हैं हमेशा आवाज करते हैं कि भगवान भगवान कुछ नहीं है क्या, आपका कहने से भगवान नहीं है क्या। हाँ महाराज एक बार बता रहे थे, जैसे कोई एक है बहुत पैसा दे करके टीवी ले, हाँ और बाद में वो टीवी में यदि कुछ नहीं आता है, कुछ देखने की चीजें नहीं आते हैं तो गाली देना शुरू करें, हाँ ये क्या है, ये टेलीविजन प्रसारण केंद्र का कुछ नहीं है, कोई डिपार्टमेंट नहीं है, कोई ऑफिस नहीं है, हाँ सब है लेकिन आपका टीवी बिगड़ा चुका है। उसी प्रकार हमारा मन गंदा है, हमारा हृदय गंदा है। मन हृदय गंदा होने के कारण ऐसा नहीं कि हमारा मन हृदय गंदा होने के कारण ऐसा हमें नहीं सोचना चाहिए कि भगवान नहीं है, भगवान है लेकिन हमारा मन गंदा है, हमारा मन बिगड़ चुका है, खराब है, इसीलिए खराब मन के द्वारा भगवान को दर्शन नहीं हो पाता है। और भगवान को दर्शन करने के लिए विधि होती है, जिस प्रकार ये भी बता रहे थे जैसे कि मिट्टी के भीतर आलू है, टमाटर है, कॉलीफ्लावर है, सब्जी है, सब कुछ है लेकिन ये सारे चीजों को निकालने के लिए प्रोसेस होती है। उसी प्रकार भगवान को देखने के लिए एक विधि होती है, हाँ सब कुछ है लेकिन भगवान को देखने के लिए एक विधि होती है। ध्यान ध्यान करने से क्या होगा, शांति रखना चाहिए। ऐसे जो लोग को दिखता नहीं है तो ऐसे आवाज करते हैं, भगवान एक निराकार, भगवान दिखाई पड़ो नहीं तो आज से मैं आपको निराकार कहना चालू करूंगा, निराकार को कुछ भी को, आपका चैलेंज से थोड़ी भगवान आएंगे। हाँ भक्ति में सर भगवान सरलता से दर्शन देते हैं, आप चैलेंज करोगे तो भगवान कैसे दिखेंगे। एक बार ऐसे मैं आ रहा था, हाँ तो मंदिर के ओर आ रहा था तो रॉयल कॉलेज के सामने एक कॉलेज से एक लड़का निकल कर अचानक वो कह पड़ा, वो शायद वो लड़का मंदिर में आ रहा था तो अचानक मुझे पूछा कि आप भगवान को देखे हो क्या, तो आप मुझे दिखा सकते हो क्या, तो ऐसे कहने लगा। तो मैं और सारे बाकी लड़के लोग उसके पास थे तो मैं और कुछ बोला नहीं लेकिन मन में ऐसा मैं कहा ये पक्का उल्लू है। तो सूर्य तो है लेकिन उल्लू को दिखता नहीं है, सूर्य का प्रकाश इसने सारा दुनिया देखता है लेकिन उल्लू क्या कहता है सूर्य नहीं है, सब अंधेरा अंधेरा है। हाँ उसी प्रकार सारे संसार में सब उल्लू है, हाँ वो देख नहीं पाते, यदि वो भगवान है लेकिन हमारे में शक्ति न होने के कारण हम भगवान को देख नहीं पाते। हाँ तो और प्रभुपाद जी आज के तात्पर्य में भी और एक बात बताते हैं, ऐसे कुछ संसार में लोग होते हैं जो मायावादी होते हैं, ऐसे भगवान भक्त भी सारे जगह में भगवान का दर्शन करता है और एक मायावादी भी सारे जगह में सब कुछ भगवान का दर्शन करने का बताता है लेकिन सच साक्षात्कार मायावादी को नहीं होता है, असल जो भगवान को जो दर्शन करता है वो भक्त ही दर्शन करता है। ये मायावादी और भक्तों के भीतर अंतर है, भक्तों का दर्शन जो है सही है लेकिन मायावादी का जो दर्शन है वो शरीर के संबंध में जुड़ा है लेकिन भक्तों का दर्शन वो जड़ और चेतन का तफात को जान लेता है, जान करके दर्शन करता है लेकिन मायावादी का जो दर्शन है भगवान का दर्शन है वो शरीर के संबंधित जुड़ा हुआ है। वो ऐसे कहते हैं कि पत्नी बच्चे हैं, बच्चा भी न पत्नी भी भगवान है, बच्चा भी भगवान है, कुत्ता भी भगवान है। तो कुत्ता भी भगवान है, कुत्ता को अल्टर में बैठा के आरती करो, पत्नी यदि भगवान है तो सुबह उठ के दंडवत करो। सही बात है, ये सत्य है, पत्नी भगवान नहीं है कि कुत्ता भगवान नहीं है, पत्नी के भीतर भगवान है, ये बात भक्तों को मालूम है, भक्त जानता है। कुत्ता के भीतर भगवान है लेकिन कुत्ता भगवान नहीं है, मनुष्य भगवान मनुष्य के भीतर भगवान है लेकिन मनुष्य भगवान नहीं है। लेकिन आजकल के मनुष्य क्या बताता है कि मैं भगवान हूं। और भगवान को जब थोड़ा सा प्रभुपाद जी ऐसे बताते हैं, और आजकल के भगवान को जब दांत में थोड़ा दर्द होता है तो हॉस्पिटल में जाके बोलता है डॉक्टर साहब मुझे बताओ मुझे बचाओ दांत में बहुत दर्द है। ये आजकल के भगवान है, सच भगवान है वो इतने दिनों तक इतने बड़े गिरिराज को धारण करने के बाद वो हंस रहे हैं, इतने बड़े पर्वत को उठा करके वो हंस रहे, छोटा सा बालक। लेकिन यहाँ पर ये भगवान जी को दांत में थोड़ा दर्द है, हाँ वो हॉस्पिटल जाना होता है, ये आजकल के भगवान है। और ये बात भी है कि मायावादी का उद्धार हो सकता है, मायावादी जो होते हैं निर्विशेषवादियों से श्रेष्ठ होते हैं। और इसलिए भगवान चैतन्य महाप्रभु प्रकाशानंद सरस्वती और सार्वभौम भट्टाचार्य को उद्धार कर दिए। ये सब मायावादी थे, उनका उद्धार हुआ। लेकिन निर्विशेषवादी है ना, वो ऐसे उनका ज्ञान है, भगवान का हाथ है ना, पैर है ना, कान है ना, नाक है ना, पैर कुछ कुछ है, कुछ नहीं है ना, वो खा सकता है ना, चल सकता है ना, वो देख सकता है ना, सुन सकता है, ऐसे बना देते भगवान के, ऐसे बना देते हैं ये निर्विशेषवादी, ऐसे भगवान को बना देते हैं। आजकल के जो निर्विशेषवादी है ना, वो मतलब कंस रावण रावण से भी और खतरनाक असुर है। कंस रावण को तो पता था कि हाँ कृष्ण है, ये भगवान है, ऐसा कुछ पता था कंस को, मालूम था कि भगवान हाँ ब्रज में आ गए हैं। लेकिन निर्विशेषवादी जो होते हैं वो कंस रावण से भी और भयंकर है। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु बताते हैं कि ऐसे लोगों का भाष्य जब हमारे हम सुनते हैं तो हमारा सर्वनाश हो जाता है। मायावादी भाष्य सुनीले है सर्वनाश, मायावादी और निर्विशेषवादियों के बात जब हमें कान में लेंगे तो फिर हमारा भगवान का जो भगवान के प्रति जो श्रद्धा है वो टूट सकता है। तो आज के प्रसंग में प्रभुपाद जी बताते हैं, तो रंतिदेव जी ऐसे है कि भगवान के भक्त थे जिन्होंने सारे जगह में भगवान को दर्शन कर पा रहे थे। अपने परिवार, अपने जो बाकी सब सारे जो कि भोग करने की जो आवश्यकता, ये सब को भगवान का भक्ति करने से वो अपने आप छूट सकता है, छूट जाता है, परिवार छूट जाता है, कि हमारे भोग करने की जो बुद्धि है ये संसार में बद्ध जीवों के भीतर एक बहुत बड़ी कमजोरी है ये भोग करना। लेकिन जैसे भगवान का भक्ति प्राप्त होती है वो ऐसे ऑटोमेटिक छूट जाती है, परिवार छूट जाता है, सब कुछ सारे संसार छूट जाता है, और उनका किसी वस्तु के प्रति कोई नजर नहीं रहता, ध्यान नहीं रहता, कोई वस्तु के प्रति उनका आसक्ति नहीं रहता। तो उसी प्रकार रंतिदेव अपने हृदय के ऐसा बना लिए थे भगवान का भक्ति करके, तो फिर अपने परिवार भले इतने कष्ट में है, खाने के लिए कुछ नहीं होता है, फिर भी वो भगवान का भक्ति भगवान का भजन को नहीं छोड़े। और अंत समय में हमें देखते हैं रंतिदेव जी भगवान को प्राप्त करते हैं। यही वास्तविक भगवान का भक्ति में दृढ़ बने रहना, यही वास्तविक तपस्या है। तपस्या ये नहीं कि हम ब्रज में रह जाएं, वृंदावन वास करें, मथुरा वास करें, मथुरा में तो कंस भी रह रहा था, क्या हो गया? और प्रभुपाद जी बताते हैं वृंदावन में रह करके यदि जो व्यक्ति को काम वासना सताती है वो मरने के बाद बंदर बनेगा, अर्सुअर बनेगा। इसीलिए प्रभुपाद जी बताते हैं ऐसे भावना जिनके मन में आती है तो तुरंत वृंदावन को छोड़ देना चाहिए। तो ऐसे वहां पर रह करके जो धाम का स्फूर्ति नहीं हो पाता है, ये प्रभुपाद जी से महान संत को हो सकता है। हमें जब वृंदावन में जाते हैं कम से कम अपराध के डर से हमें इतने हमारे हृदय को कम भाव इतना ही बना के रखते हैं अपराध के डर से, ऐसा नहीं कि हमें भगवान के प्रति मतलब रुचि उत्पन्न हो गई, नहीं, डर करके कम से कम धाम अपराध ना हो जाए इस प्रकार का भाव बनाए के रखते हैं। तो ये हमारा दशा है। तो लेकिन रंतिदेव जी ऐसे कहीं पे भी रहे, किधर भी रहे, कैसे भी स्थिति में रहे, किसी भी तो हर समय हर जगह में हर परिस्थिति में वो भगवान को दर्शन कर पा रहे थे। तो ऐसे और प्रभुपाद जी बताते हैं ऐसे संतों के कीर्ति जब हमें गाते हैं उनके विषय में हम सुनते हैं हमारा जीवन भी धन्य हो जाता। हमें भी भगवत साक्षात्कार करने के लिए हमारे भीतर भी एक प्रकार का बल प्राप्त होती है। तो रंतिदेव के प्रसंग से हमें इतने ही आज हमें जीवन में ले सकते हैं कि भक्ति में दृढ़ रहना, भक्ति करना, ये मनुष्य जीवन का सबसे बड़ी व्रत है, तपस्या है। ये एक ही चीज को लेकर के यदि हमें आगे चलेंगे तो रंतिदेव का कृपा अवश्य हमें प्राप्त होगा। और रंतिदेव महाराज जब हमारे पे कृपा का देंगे तो फिर हमें सारे जगह भगवान को दर्शन पाते हैं। अब अभी हमारा ये बुद्धि नहीं है, जब तक एक व्यक्ति द्वैत्व भाव में रहे हैं, है शत्रु मित्र भाव में है, तो प्रभुपाद जी बताते हैं वो व्यक्ति माया में चिपका हुआ है। जब तक हमारे मन में ये शत्रु है मित्र है इस प्रकार का भाव है तो फिर वो माया में है, ऐसे प्रभुपाद जी का कहना है। ये सही बात है, ये सत्य है। जब तक हमारे किंतु ये भगवत धाम जो निम्न स्तर व्यक्ति के लिए, जब तक ये मत्सरता है तो फिर हमारे जीवन में कुछ आधा की प्रगति हुआ है करके हमें ऐसे नहीं सोचेंगे। और एक बार महाराज भी बता रहे थे, भक्त बनने के बाद भक्त के भीतर यदि मत्सरता है तो भक्त नहीं है। गुरु महाराज बता रहे थे, एक बार उनका लेक्चर में सुना कि वो बता रहे थे कि भक्त बनने के बाद यदि उनके भीतर ईर्ष्या है तो फिर वो भक्त नहीं है। तो रंतिदेव की कृपा से यदि व्यक्ति सब कुछ छोड़ सकता है लेकिन मत्सरता त्यागना इतना जल्दी नहीं होता है। और सबका इलाज है, शास्त्र में सबका इलाज बताया गया है, लेकिन मत्सरता का इलाज कहीं नहीं है। क्रोध को मोड़ सकते हैं भगवान की सेवा के लिए, कि लोभ को भी भगवान की सेवा के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, कि और बाकी चीजों को भगवान की सेवा में हम डाइवर्ट कर सकते हैं, उनको और उनके तरफ दिखा सकते हैं, लेकिन मत्सरता वो खत्म कर देता है लेकिन उनका इलाज नहीं है। शिशुपाल के जैसे, शिशुपाल अंत समय तक ईर्ष्यान्वित रहा भगवान उनको आखिर में मारे। तो इसी प्रकार जब रंतिदेव जी का कृपा हो जाए, हमारे भीतर ऐसी शक्ति हो, हमारा भीतर भी ऐसे भगवत भक्ति हो, जो भक्ति के द्वारा हमारे भीतर जो ये मत्सरता है वो खत्म हो जाए और भगवान का दर्शन हमें हो सके। मत्सरता फिर क्यों आती क्यों है? मत्सरता का होने का प्रमाण क्या है? ना हमारे भीतर भोग है, हमारे भीतर भोग होने के कारण मत्सरता उत्पन्न होती है, नहीं तो हमें किसी के प्रति ईर्ष्यान्वित नहीं होना है। जब भोग प्राप्त नहीं हो पाती है तो हमें दूसरे के प्रति, दूसरे का प्रगति जब देखते हैं कि दूसरे के पास वो चीज है मेरे पास क्यों नहीं, तो ये सब चीजें जब हमें देखते हैं तो फिर हमें ईर्ष्या, हमारे भीतर ईर्ष्या आती है। तो ये ईर्ष्या को हमें निकालने के लिए और सब चीजें तो ऐसे ऐसे चला जाता है, क्रोध लोभ आसक्ति ये सब चला जाता है, ये सब चीजें नष्ट हो जाती है, लेकिन ईर्ष्या करना, ईर्ष्या जो है ना वो इतना जल्दी खत्म नहीं होती है। ईर्ष्या खत्म नहीं होती है मतलब भोग है। अरे ये भोग जो बीमारी है अब भगवान का शरण में जाने से होता है। जिन्होंने भगवान का शरण में सही रूप में आश्रय लिया है तो भोग को छोड़ सकता है, नहीं तो अंत समय तक छोटे छोटे भोग की चीजें हम सताते रहेंगे। तो रंतिदेव को आज हमें यहीं पर प्रार्थना करना है, अपने जीवन को जिस प्रकार भक्ति के द्वारा बना लिए तो कृपा करके हमें भी आशीर्वाद दें, तो हमें भी हमारा जीवन को इस प्रकार का बनाएं जो हम भगवत धाम जाने के लिए, भगवत धाम जाने तो दूर की बात है, कम से कम हमारा इस प्रकार हमारे जीवन को बना लें भगवान को दर्शन करने का। चाहे वो एक भक्त प्रभुपाद जी बताते हैं, भक्त कहीं नरक भी जाने के लिए भयभीत नहीं, जब नरक में यदि उनको भगवान का सेवा प्राप्त होता है, ये भौतिक जगत में हमें रहने के लिए पसंद है, यही जगह हमारे लिए पसंद है यदि भगवान का भक्ति भगवान का सेवा हमें मिले। और स्वर्ग में यदि हमें रहें तो भगवान का सेवा नहीं है तो वहां पर भक्त रहकर प्रसन्न नहीं होगा। तो इस प्रकार का यदि हमें रंतिदेव जी को प्रार्थना करें कि भगवान का सेवा मिले, भगवान का भक्ति प्राप्त हो, तो फिर हमें कहीं पर भी रहें कोई फर्क नहीं गिरेगा। यही भगवत साक्षात्कार का मूल उपाय है, सेवा और उनका भक्ति, ये हमारे हृदय में रहें चले तो फिर और कोई तकलीफ नहीं है। हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद की कुछ प्रश्न है? एनी कमेंट्स? धन्यवाद। श्री प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंद।